आधा घंटे के लिए।
वार्तालाप बंबई में लंबा चौड़ा चलता है, बाबा को जल्दी जाना होगा। और क्या हुआ, क्या सब लोग आप हुए मर गई दुनिया की स्टेज पे आ गए?
बाबा
हाँ जी,
आत्मा की तीन प्रक्रियाएं है, मन बुद्धि और संस्कार।
थोड़ा हाथ उठा दिया करें तो। हाँ,
आत्मा की तीन शक्तियां है, मन बुद्धि और संस्कार।
हाँ जी,
वैसे ही सुप्रीम सोल की तीन शक्तियां है, ब्रह्मा विष्णु और महेश। ब्रह्मा है मन का प्रतीक, विष्णु है संस्कार का प्रतीक और शंकर है बुद्धि का प्रतीक। तो बाबा मुरली भी बोलते हैं कि सुप्रीम सोल बाप में मन होता ही नहीं है, तो फिर मन की क्रिएशन कैसे कर सकता है?
मन को कंट्रोल रखता है सदैव, जिसमें प्रवेश करता है उसके मन को भी कंट्रोल कर देता है।
मतलब उसमें प्रॉपर्टी है नहीं तो फिर वो?
ये किसने कहा नहीं है? जब आत्मा माने ही मन बुद्धि और संस्कार, और आत्माओं का मन जो है अमन नहीं होता है, और उस आत्मा में ये विशेषता है कि उसका मन अमन चैन में रहने वाला है। एक सेकंड भी अमन चैन से बाहर नहीं रह सकता।
राष्ट्रपति वाला पॉइंट, किसी क्रिश्चियन को लाके बैठा देंगे तो पंडित पापाडी क्रिश्चियन हुई थे पाना
उसको। क्रिश्चियंस में ही दो छेड़े हैं, एक आस्तिक और एक नास्तिक। तो जो आखिरी है वो भी तो स्टेज पर आना चाहिए, ताकि पता चले कि धर्म क्या चीज है और अधर्म क्या चीज है। अति होती है तब अंत होता है।
हाथ उठा के बोलो।
नहीं नहीं, आप देख सकते हैं हाथ उठाना।
नहीं नहीं, वो कैमरा भी तो तुरंत आना चाहिए आपके सामने। हाँ जी,
सदा कायम सृष्टि पर शिव बाबा।
हाँ जी,
तो हम बच्चों को क्या लिखना चाहिए रजिस्टर में? हम शिव बाबा की गोद में आए हैं कि प्रजापिता ब्रह्मा यानी अम्मा बाप की गोद में आए? अगर हम बच्चे जो है, अगर गीता का भगवान प्रजापिता ब्रह्मा को सिद्ध करते हैं, तो बाहर की दुनिया वाले क्या कहेंगे कि तुम शिव को सिद्ध करते हो? शिव गीता का भगवान है या नेक्स्ट टू गॉड जो कृष्ण है उसको आप सिद्ध करते हो? गीता का भगवान
मुरली में बोला है नेक्स्ट टू गॉड इज शंकर, फिर मुरली में बोला है नेक्स्ट टू गॉड इज प्रजापिता, फिर मुरली में बोला है नेक्स्ट टू गॉड इज कृष्ण। अब नेक्स्ट टू गॉड एक होगा या अनेक होंगे, इसका मतलब ये हुआ कि जो संगमयुगी कृष्ण है, संपन्न स्टेज वाला, जो नारायण है, जो प्रजापिता है, जो शंकर है, वो ही नेक्स्ट टू गॉड है और वो एक ही है। जैसे मुरली में बोलते हैं तुमको बाप भी मिला है, टीचर भी मिला है और सदगुरु भी मिला है, लेकिन एक ही रूप में मिला हुआ है।
अच्छा, एक और पॉइंट है कि जब बाप भी सृष्टि पर आते हैं तो तीनों साकार मूर्तियों को साथ लेके आते हैं कि सिर्फ दो मूर्तियों को?
मूर्ति की रचना की जाती है
या ये दो ही चित्र होने चाहिए, तीन चित्र क्यों है? अलंकार तो विष्णु को दिखाया है, ब्रह्मा और शंकर को तो दिखाया नहीं है।
जिन्होंने अलंकार धारण ही नहीं किए, शिव का संपन्न रूप है गॉड फादर के रूप में, और गॉड फादर वन गाया जाता है या दो या तीन?
वो वन कौन है?
गॉड फादर इज वन, और बाप सदैव बच्चे के द्वारा प्रत्यक्ष होता है। ये भारत की परंपरा है, बाप स्वयं अपने को प्रत्यक्ष नहीं करता। कौन करते हैं? बच्चे प्रत्यक्ष करते हैं, और बच्चों में भी बड़ा बच्चा बाप समान माना जाता है। काम करता होगा कि बिना काम किए? काम करता है। तो जो गॉड इज वन, तो गॉड का बच्चा भी वन कहा जाता है। इसलिए भक्ति मार्ग में 33 करोड़ देवताओं के बीच में सिर्फ शंकर का ही नाम शिव के साथ जोड़ा हुआ है। जैसे दुकान का नाम रखते हैं एंड संस कंपनी, बाप का नाम देते हैं राजहंस एंड संस कंपनी, ऐसे ही शिव के साथ किसका नाम जुड़ा हुआ है? शंकर का नाम जुड़ा हुआ है। इसलिए भक्ति मार्ग में जो शास्त्र हैं, उनमें शंकर का नाम शिव के साथ जोड़ा गया है। ब्रह्मा का नाम या विष्णु का नाम नहीं जोड़ा गया है। और तीन तीन जो तबके हैं सूक्ष्म वतन के, उनमें सबसे ऊंचे तबके में शंकर को बैठाया गया है। इसलिए भारत में तीन समाज बन गए, शैव समाजी, वैष्णव संप्रदाय और ब्रह्म समाजी। ब्रह्मा है साकार दुनिया की ओर, और शंकर को निराकारी दुनिया की ओर दिखाया गया है नजदीक, और विष्णु को न्यूट्रल दिखाया गया है। न साकारी दुनिया से ज्यादा अटैचमेंट है और न निराकारी दुनिया से विशेष अटैचमेंट है।
बाबा ने सूक्ष्म मतन को तो काट दिया, सूक्ष्म मतन वो तो मन चित्त मात्र,
उसी स्टेज को समझना है। सूक्ष्म वतन माना शंकर और शंकर समान स्टेज को धारण करने वाली आत्माएं मनन चिंतन मंथन करने वाली स्टेज में टिकने वाली होंगी। साकार दुनिया में उनकी स्टेज ज्ञान में आने के बाद आप मुए मर गई दुनिया, उस दुनिया का क्या चिंतन करना।
उसकी मुली ने ये बताया कि 9 वर्ष में
बाबा
एक भाषा एक राज्य, मगर कौन से 9 वर्ष में उसका मिस तारीख की कुछ तो उसकी शुरुआत तो होनी चाहिए।
कौन ये कौन से सन में बोला गया?
वो 76 में बोला गया, तभी कि राम राज्य आया।
76 में नहीं बोला गया, 67 में बोला गया।
67 में बोला गया कि ये बात 76 के लिए लागू होती है कि उसके बाद लागू?
अरे 9 वर्ष कब पूरे होते हैं?
76 में क्या एक भाषा एक राज्य सब कुछ आ गया?
जिसने जिसके लिए बोला गया है आप मुए मर गई दुनिया, दुनिया का 76 में विनाश की भी घोषणा की, तो कौन सी बुद्धि रूपी धरणी है जहां दुनिया का विनाश हो गया, पक्का अनुभव हो गया कि अब ये दुनिया न लौकिक रहने वाली है और न अलौकिक दुनिया रहने वाली है, दोनों ही दुनिया झूठ झूठी है। इनसे बुद्धियोग तोड़ देना है, देखते हुए भी नहीं देखना, इस दुनिया वालों की बातें सुनते हुए भी नहीं सुनना, तो जैसे विनाश हो गया।
दिखाई देता है विनाश हो गया, वो अपने अंदर की चीज की बात है या बाहर की दुनिया?
पेट में बच्चा आता है, शरीर में मलेरिया बुखार आता है, तो मलेरिया बुखार का कीटाणु दिखाई पड़ता है? हैं? नहीं दिखाई पड़ता है, वो यंत्र तैयार करना पड़े। तो ये भी ज्ञान का तीसरा नेत्र तैयार करना पड़े। और
बाबा मुले बोलते हैं कि सर्व संबंध की रचना बाप से लेनी चाहिए, तो उसमें कोई लिमिट है ही नहीं। तो इधर बाबा ऐसे ही बोलते हैं कि व्यभिचारी याद अव्यभिचारी याद, तो सर्व संबंध की रचना में ऐसी कौन सी रचना ले और कि जिससे व्यभिचारी याद रहे, और किस और ऐसी कौन सी रचना न ले जिसके जिससे याद में अव्यभिचारी मन न हो, मतलब भाई कॉन्ट्रास्ट कैसे करें?
लगता है आपको व्यभिचारी या व्यभिचारी का अर्थ नहीं पता है।
बाबा सभी प्रकार की रचना अगर लेनी है तो सभी प्रकार के रचना में क्या मतलब, तो व्यभिचार को आता ही नहीं ना?
अब व्यभिचार कहते हैं एक के साथ लगाओ, और व्यभिचार कहते हैं अनेकों के साथ लगाओ। अब एक के साथ जो लगन है, लगाव है, अटैचमेंट है, वो कोई भी संबंध का हो, उसे आप व्यभिचारी कहेंगे या व्यभिचारी कहेंगे? हाँ। और
बाबा मुरली में आया है कि तुम्हारे में भी नीलम परी और पुखराज परी है, वो दोनों का भी नहीं।
ये तो एक मिसाल दिया, सिर्फ नीलम की बात नहीं है, मूंगा भी होगा, पन्ना भी होगा, माणिक भी होगा। ये तो ज्ञान रत्नों को मिसाल से जोड़ा गया है, चैतन्य की बात है। जैसा रतन होगा चैतन्य में, वैसा ही ज्ञान सुना देगा। पुखराज की कोई वैल्यू नहीं होती है, तो उसके ज्ञान की भी कोई वैल्यू नहीं होगी, उसमें नास्तिकता भरी हुई है। बाप की पहचान जैसे है ही नहीं, तो बाप को नहीं जानता तो जैसे नास्तिक है। बाप क्या है ये बुद्धि में बात बैठी ही नहीं है, जिसकी बुद्धि में ये बात ही नहीं बैठी है ये बाप कौन है, तो किसकी मानेगा? वो किसी की मानेगा या मनमत चलाएगा? मनमत चलाएगा, क्योंकि नास्तिक है। या तो कहेगा बिंदी बाप है, या तो कहेगा बिंदी बाप अलग और साकार बाप अलग। बाबा तो मुरली में बोलते हैं कि निराकार बाप साकार बिगर कोई काम करते ही नहीं, आज भी मुरली में बोला साकार बिगर एक धर्म एक राज्य एक भाषा की स्थापना हो ही नहीं सकती। साकार होगा तो एक और अनेक का ज्ञान होगा, साकार ही नहीं होगा तो एक कौन है और सर्वव्यापी कैसे है, ये कैसे पता चलेगा? एक व्यापी है पता चले तो साकार में निराकार का भी पता चले, और एक व्यापी नहीं है और मुख से बोलते हैं कि परमात्मा बाप सर्वव्यापी नहीं है, इसका कोई अर्थ हुआ? कोई अर्थ नहीं। और
मैं जिस स्तर में प्रवेश करता हूँ उसका नाम ब्रह्मा रखना पड़ेगा, अगर शिव नेत्र तो शंकर को दिखाते हैं ब्रह्मा को नहीं
जब शंकर है, शंकर नाम रूप धारी से संसार में प्रत्यक्ष होता है तो उसके मस्तक में से चंद्रमा निकाल दिया जाए तो शंकर साबित होगा? नहीं होगा। जब तक अधूरा चंद्रमा मस्तक में प्रवेश है तब तक शंकर है, नहीं तो बाद में नाम क्या पड़ जाता है? नारायण नाम पड़ जाता है। शंकर की ग्लानी करेंगे, शिव की ग्लानी करेंगे, सब देवताओं की ग्लानी करेंगे। क्यों? क्योंकि सब अपूर्ण स्टेज वाले हैं, लेकिन नारायण की कोई शास्त्रों में कोई प्रकार की ग्लानी नहीं है। कहां की बात? यहां संगम युग की बात है। वो विश्व का महाराजा है, सारा विश्व से पसंद करता है, विश्व पिता है।
शिव को क्यों अपूर्ण कहा? शिव को क्यों अपूर्ण कहा?
जो शिव है वो ही शंकर है, नाम दे दिया। शिव अपूर्ण और पूर्ण की बात ही नहीं, जो निराकार है, जो बिंदु है, जब साकार शरीर में ही नहीं है तो उसके लिए बोला है मुरली में जैसे मृतवत जड़। बिंदु अगर शरीर धारण न करे तो क्या हो गया? जड़वत हो गया। परम धाम में ज्योति बिंदु आत्माएं पड़ी हुई हैं तो क्या है? जड़वत है, न कुछ सोच सकती है, न बोल सकती है, न कुछ कर्म कर सकती है।
शिव को तो विश्लेषण कहा जाता है।
हैं?
शिव को तो विश्लेषण कहा जाता है।
विश्लेषण?
इससे परे जिसके अंदर कोई विष मात्र नहीं होती, उसको कल्याणकारी तो है।
वो ही तो विष पिएगा। जिसके अंदर खुद ही विषय विकार भरे होंगे वो विष पिएगा? वो तो भक्ति मार्ग वालों ने दिखाया है कि शंकर विष पीता था। अरे शंकर विष पीता था या उसके अंदर शिव विष पीता था? पीने वाला कौन है? शिव है, वो ही कल्याणकारी है। जिसकी इच्छा होगी वो इच्छा मात्र में विद्या कहा जाएगा? नहीं। और हाँ जी,
शिव को तो महावैष्णव भी कहा गया है, कैसे विष पी सकते हैं?
महाशब्द कब लगता है? महानारायण, महालक्ष्मी, जब दो इकट्ठे होते हैं तो महाशब्द लगता है। महावैष्णव जब कहा जाता है इसका मतलब हुआ कि विष्णु उतना निर्वश नहीं है जितना महावैष्णव निर्विश है। और
गणेश और कार्तिकेय शंकर के दो बच्चे बताए गए हैं, तो एक जो है शंकर का बच्चा मतलब कहा जाता है उसको, और एक को पार्वती का बच्चा कहा जाता है, अलग अलग क्यों बताया?
पार्वती की रचना किसने, पार्वती ने रचना किसकी की? गणेश की रचना की। गणेश को मनुष्य के रूप में दिखाया है या जानवर के रूप में दिखाया है?
शुरू में तो मनुष्य का रूप दिखाया था, बाद में जानवर का रूप दिखाया
था। गणेश जब पूजा जाता है, जो पूजनीय है, जिसकी मंदिर में पूजा दिखाई गई है, वो जानवर के रूप में दिखाया जाता है। और जानवर पूरे शरीर से जानवर नहीं है, सिर्फ है मुख में जानवर है, माने ज्ञानेंद्रियों से जानवर है। जो ज्ञानेंद्रियों से जो कार्य गणेश का बाप कर सकता है, वो कार्य गणेश नहीं कर सकता। गणेश किसकी रचना हुई? पार्वती की रचना है। और वो रचना भी दिखाते हैं भक्ति मार्ग में कि स्नान करते समय जो मैल माटी इकट्ठी हुई, वो मैल से उसकी रचना हुई। ये मैल माटी क्या चीज होती है? देह अभिमान। भगवान स्त्री रूप में संसार में प्रत्यक्ष नहीं होता। किस रूप में प्रत्यक्ष होता है? पुरुष रूप में प्रत्यक्ष होता है। क्यों? कोई कारण होगा? हैं? हाँ, क्योंकि पुरुष रूप में आता है तो सारी दुनिया की मनुष्य मात्र आत्माओं से मिल सकता है। अगर स्त्री रूप में आवेगा तो सर्व संबंधों से मेल नहीं हो सकता, उतना नजदीकीपन का अनुभव आत्माएं नहीं कर सकती। अगर करेंगी भी तो देहभान बढ़ेगा या घटेगा? बढ़ जाएगा। इसलिए पार्वती की जो रचना है गणेश, वो देहभान युक्त दिखाई जाती है। रचयिता एक होना चाहिए या दो होना चाहिए? बीज एक होना चाहिए रचयिता के रूप में या दो होना चाहिए? एक ही होना चाहिए। और जो रचना की गई थी वो रचना बाप के साथ विरोध का कार्य करना शुरू करती है या प्यार का काम करना शुरू करती है? फाउंडेशन से ही विरोध करती है। बच्चा घर परिवार में भी वो अच्छा होता है जहां पति पत्नी की 100% सहमति से पैदाइश होती है। अगर थोड़ा भी वाइब्रेशन का झगड़ा है, प्यार नहीं है, वाचा का झगड़ा है या कर्मेंद्रियों की मारपीट है, तो बच्चे की भी पैदाइश अच्छी नहीं हो सकती। शास्त्रों में जो भी बातें आई हुई हैं, वो कहां की यादगार है? संगम युग की यादगार है। और कार्तिकेय बल तिक तिक करने वाला है, क्योंकि जो दो मुहा आदमी होता है वो भी उसकी बातें भी टिक टिक करने वाला माना जाता है, कभी एक मुख से बोलता है कभी दो मुख से बोलता है, और उसको तो छह मुख दिखाए गए हैं। विदर्भियों में छह धर्म ऐसे हैं जो आस्तिक हैं, इस्लामी, बौद्धी, क्रिश्चियन, उसके बाद सन्यासी, मुस्लिम और सिख, बाकी तो नास्तिकता शुरू हो जाती है। तो छेव की टिक टिक करता है छेव धर्मों से। एक धर्म में कन्वर्ट होकर नहीं रहता,
वो छह धर्म से पालना लिया है बाबा।
जरूर कोई ना कोई जन्म में पालना भी लेता है, देता भी है।
छह धर्म उसके उसके पालक बने होंगे तभी तो उसको जो
तभी तो छह मुंह से बोलता है। कोई आदमी एक ही तरह का ज्ञान बोलता है, एक ही भाषा बोलता है तो कहेंगे ये तो एक मुख वाला है, ये तो रुद्राक्ष के मणके होते हैं ना। कोई अनेक मुख वाले होते हैं, कोई से प्रभावित हो जाते हैं तो उस तरह की बातें करने लग पड़ते हैं, और एक मुख वाला एक ही बात करेगा, दूसरी बात नहीं कर सकता। तो और जो अनेक मुख वाले रुद्राक्ष के मणके हैं वो ये साबित करते हैं कि उनमें और धर्म की आत्माएं प्रवेश करती हैं, और वो बलात् प्रभावित हो जाते हैं।
मतलब वो भी रुद्राक्ष का मणका कहा जाएगा।
जो कार्तिकेय है वो रुद्रमाला का मणका नहीं है, शंकर जी के आसपास और जो भी दिखाए जाते हैं वो सब रुद्रगण नहीं होते, सिर्फ पार्वती को छोड़कर सभी रुद्रगण हैं। जो जो खास बच्चे होंगे वो रुद्रगण नहीं होंगे। नहीं, मानने वाले जैसे एक मुख की जो पक्की पैदाइश होंगे वो ज्यादा जन्म एक मुख वाले ही रहेंगे, या ज्यादा जन्म विरोध करने वाले होंगे है? एक मुख वाले, हाँ, जो असल सूर्यवंशी होंगे वो आदि से अंत तक सहयोगी बनने वाले होंगे, बात बात में सहयोग करेंगे।
एक लाख
रुद्रमाला कितने की होती है?
नहीं, जैसे सूर्यवंशी एक लाख की बताया।
वो सूर्यवंशी एक लाख है, उसमें प्रजावर्ग वाले भी तो हैं, हैं? हाँ जी, तो उनका चुनाव बाद में होता है। और
आठ कोई कहेंगे सूर्यवंशी,
असल में तो आठ ही है, जहाँ से पारिवारिक इकाई नई दुनिया की शुरू होती है। हैं?
ओरिजिनल आठ ही कहे जाएंगे।
हाँ जी,
बाबा ने कहा ओम मटेली कितना निश्चित शिव, बाबा ने ये तो नहीं कहा ब्रह्मा कुमारी प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी इस निश्चित शिव का ओम मटेली नाम दिया
है।
हाँ, उमा तो तीनों मूर्ति तो होनी चाहिए।
तो अब ब्रह्मा की मूर्ति
चाहिए,
अभी ब्रह्मा की मूर्ति कहाँ है?
प्रैक्टिकल में होनी चाहिए।
है कहाँ अभी? ब्रह्मा की मूर्ति किसे मानेंगे?
बाबा बोलते हैं,
और बाबा बोलते हैं वो छोड़ो, प्रैक्टिकल में है कहाँ
ब्रह्मा की मूर्ति?
ब्रह्मा की मूर्ति प्रैक्टिकल में कहाँ है?
ब्रह्मा इंस्पिरेटिंग पार्टी वाला है ना?
इंस्पिरेटिंग पार्टी वाला है? मूर्ति है, मूर्ति माने साकार, मूर्त माने साकार या अमूर्त माने साकार? मूर्ति है तो मूर्त माना साकार होना चाहिए, अमूर्त है तो इंस्पिरेटिंग पार्टी होना चाहिए।
बाबा ने तो एडवांस पार्टी के लिए इंस्पिरेटिंग प्लानिंग और प्रैक्टिकल तीनों बताया।
तीनों है तो तीनों की मूर्तियां होनी चाहिए ना। कभी आप कहते हैं, कभी कहते हैं इंस्पिरेटिंग
है ना, होनी चाहिए। तो ओम बंडली क्यों?
तो चाहिए जब कहा तो आपकी बुद्धि में है या नहीं है? तीनों मूर्तियां हैं, हैं? लिखिए कागज पर, लिख करके दीजिए अभी। कागज पर लिख के तीनों मूर्तियों को स्पष्ट करिए, नाम रूप धाम गुण कर्तव्य। लिखो ना, दे दो कागज। भूत प्रेत होते हैं, उनको जब आवलियों के सामने ले जाते हैं तो बांधा जाता है।
क्या आप इस आत्मा को साबित करना चाहते हैं?
नहीं, एक बात बताई, इंस्पिरेटिंग पार्टी होती है ना तो भूत प्रेत होती है या साकार में होती है?
अगर आपने ही बताया ना, एडवांस में तीन ग्रुप्स है, इंस्पिरेटिंग है।
जो बताया है तो गलत बताया क्या? बाप ने भी बताया, अम्मा ने भी बताया, हम भी बताएंगे।
नहीं लिखेंगे
आप अपनी मंजूरी से?
बाबा हाँ, इनका ये प्रश्न था गीता पाठशाला में। हाँ, मनुष्य गुरु प्रजेत का ब्रह्मा को कहते।
वो कहेंगे हमारा गीता पाठशाला में ये प्रश्न नहीं था, तो आप झूठे हो जाएंगे फिर।
अच्छा, लिखा दिया। हाँ, बोलो।
तो ये जो पिता ब्रह्मा मैंने साकार और निराकार भेद करते थे बार बार, ये साकार बोले निराकार
बोले, तो पूछने वाले से पूछो, उनसे ये पूछो कि वो कौन है। हर
गणेश मातृपिता का अवर संतान नहीं है,
है?
जैसे कि बताया गणेश जो है मातृपिता का अवर संतान नहीं है, गणेश।
हाँ, लेकिन लेकिन बाप ने तो स्वीकार कर लिया ना, जो भी पार्वती ने रचना की उस रचना को बाप ने स्वीकार किया या नहीं किया, बात खत्म हो गई।
जानवर भी सबसे
बुद्धि में तीखा था ना, बुद्धि में तीखा है ना, लेकिन कलयुगी दुनिया में, द्वापर युगी दुनिया में नहीं, अस्तित्व ही नहीं होता। द्वापर में ज्ञान फिर भी सात्विक स्टेज में होता है, भक्ति भी सात्विक स्टेज में होती है।
गणपति की पूजा ही बाबा कलयुग से ही शुरू होती है।
हाँ जी, तामसी युग में ही पूजा शुरू होती है, देवियों की पूजा अथवा देवताओं की पूजा, जो मनुष्य रूप में नहीं दिखाए जाते। और हाँ,
इसमें भी दो तरह के देवी गणेश दिखाए जाते हैं।
हाँ,
एक जो है विसर्जित किया जाता है, एक को विसर्जित किया जाता है।
हाँ जी, हाँ।
और एक को अस्थायी को दिया जाता है उसको, मतलब वो सीट के ऊपर सेट हमेशा रहता है, उसको विसर्जित नहीं किया जाता। जैसे जो मंदिरों में जो गणपति होते हैं वो उनको उठाया नहीं जाता, एक बार स्थापित किया जाता है।
यार उनको सही होंगी जो द्वापर द्वापरेश्वर जन्म राम वाली आत्मा के साथ टकराए नहीं है, ऐसा मुझे नहीं बोला
हुआ। ठीक है,
फिर बाबा ये भी कहते कि
अगर अगर यहाँ संगम युग में बुद्धि में टकराहट होगी तो जिसके साथ टकराहट होती है उसे कोई याद करना चाहता है? अगर टकराहट होते हुए भी जबरियन याद करे तो उसे हठ योगी कहेंगे या सहजराज योगी कहेंगे? हठ योगी की लिस्ट में है।
कृष्ण के बंदे चल रहे आपको
तो भक्ति मार्ग में कहते हैं, बाबा कहाँ कहते हैं? बाबा का नाम आपने लगा दिया, बाबा ने मुरली में बोला, वो भक्तों के लिए बोला ना, भक्त ऐसे कहते हैं।
है मुरली में आया कि बाबा अंत में ऐसी तीखी और मीठी दृष्टि देंगे कि सभी बच्चे आत्मिक स्टेज में स्थित हो जाएंगे।
है
तो बाबा ने ये भी कहा है कि जो मोटे चमड़ी वाले होते हैं उनको धर्मराज के जब डंडे गिरेंगे तब वो देहबान छोड़ेंगे। अब फिर ये तीखी और मीठी दृष्टि कितने आत्माओं तक सीमित है? क्या ये सिर्फ 1 लाख आत्माओं तक सीमित है जो अपनी
जो जन्म जन्मांतर के सहयोगी होंगे उन्हीं के लिए होगी? लौकिक में बाप अपने बच्चे को बड़े प्यार से देखता है, तो कौन से बच्चों को बड़े प्यार से देखता है और कौन से बच्चों को तीखी नजर से देखता है, टेढ़ी नजर से?
मीठी और तीखी दृष्टि दोनों का है ना।
हाँ, तीखी तीखी माने मीठी में भी तीखी होती है, कोई मीठा होता है और बहुत तीखा मीठा होता है। और
बाबा
हाथ उठाओ।
हाँ मुरलियम बोला है कि दिल्ली स्थापना करी, बम्बई है विनाश करी और कलकत्ता है आवाज पहना पिलाने वाले,
सहयोगी बने,
सहयोगी बने। अभी बाबा का बम्बई में ज्यादा आना जाना है और दिल्ली में ऑलरेडी स्थापना हो चुकी है, कलकत्ता से आवाज निकला नहीं, बम्बई से विनाश का पार्ट जो ब्राह्मण को दुनिया से विनाश के पार्ट शुरू होने वाला है, तो किस तरह का विनाश शुरू होने वाला है?
स्थापना, पालना और विनाश, तीनों कार्यों में सबसे ज्यादा कठोर कार्य कौन सा है जो धर्म पिताएं भी नहीं कर पाए? तो ज्यादा कठोर कार्य उसमें ज्यादा ताकत लगानी पड़े ना।
बाबा सब लोग जैसे ज्ञान में चलते वैसे बम्बे वाले भी चलते हैं ना?
सो नहीं चलते हैं, और ऑल इंडिया में सब विष्णु पार्टी के प्रभाव में आ गए और विष्णु पार्टियों के प्रभाव में आ गए, यहां कहां आ गए?
वो भी तो फाउंडेशन है, निकला वो इसलिए नहीं आए, उसका जो वातावरण था वो सब दिखाई देता था हमको।
हाँ जी,
कुछ काम का नहीं है वातावरण, इसलिए नहीं आया।
वो भी तो निकला, वो बॉम्बे से निकला हो ना,
ऐसे ही निकला ना, वातावरण तो यहाँ से ही तैयार वाला हो।
नहीं नहीं, फाउंडेशन जब देखा जाए कुरेद के तो जरूर फाउंडेशन कोई दूसरा है। हाँ जी, और
आत्माओं की जो सुप्रीम सोल जो है शिव, वो सबका बीज है, ठीक है?
सबका बीज है, एक बीज से जब अनेक बीज निकलते हैं तो दूसरे बीज जो हैं रचना कहे जाते हैं। यहाँ रचना रचयिता का बीजों में कनेक्शन नहीं है क्योंकि सब अनादि आत्माएं हैं, यहाँ निकलने की बात नहीं है।
हाँ
जी,
जैसे पूछना है बात की, फादर ने एक दिन कर दिया, मतलब जो बीज है ना उससे सब खेता होते हैं, तो बाकी इतना डाइवर्सिटी क्यों हो जाती?
जैसी जैसी धरणी वैसा वैसा बीज अपना रूप बदलता जाता है। जो धरणी है वो धरणी बीज से जो पैदाइश होती है उसका रूप और उसका गुण बदल लेती है। जैसे पुरुष होता है ब्राह्मण धर्म का और स्त्री होती है शूद्र वंश की, तो पैदाइश कैसी होगी? एक ही जैसी होगी क्या? अंतर पड़ जाता है। जैसे चौपाए जानवर होते हैं, शेर और शेरनी के मेल से जो बच्चा पैदा होता है वो पहला बच्चा जरूर शेर होता है। अगर जंगल में से खुदा न खास्ता शेरों की जनरेशन खलास हो जाए और शेरनी यहीं बचे, बाघ बचे, बाबर शेर न बचे, तो बाघ से जो बच्चों की पैदाइश होगी वो बबर शेर की होगी क्या? नहीं होगी। जैसे कहते हैं कि हड्डियों के ढांचे मिले डायनासोर के, वो जनरेशन खलास हो गई, लेकिन चौपाए तो थे ना। उस तरह के और भी तो जानवर होते हैं, जैसे मगरमच्छ। तो जो जनरेशन खलास हो गई, उसमें या तो मादाएं खलास हो गई होंगी, या तो नर खलास हो गए होंगे। ऐसे तो नहीं हो सकता कि बच्चे भी खलास हो जाएं, बच्चियां भी खलास हो जाएं, और पैदा करने वाले नर और मादा दोनों ही खलास हो जाएं। लेकिन उनका संयोग हुआ दूसरे चौपायों के साथ, तो दूसरे दूसरे प्रकार के चौपाय पैदा हो गए, वो जनरेशन खलास हो गई। ऐसे ही चलता है।
ब्रह्मा और शंकर को बेटा हुआ देखते हैं तो विष्णु को खड़ा
करेगा, वो अंत तक पुरुषार्थ में खड़ा रहता है। और शंकर जी देखते हैं कि महाकाली खड़ी हो गई हमारा काम करने के लिए, तो वो अपने ठंडे होके बैठते हैं, हमारा काम तो अब हो ही जाएगा, तो क्यों खड़े रहे? हाँ,
आपसे बात करनी
है। पर्सनल? हाँ तो करो, अभी सभा में थोड़ा ही पर्सनल बात की जाती है। हाँ जी
बाबा, बॉम्बे में वो पहला विनाश दिखा है, वो कब होता है, क्या कुछ मानते
हैं? हम बता तो दिया, जब समुद्र उछाल मारेगा तो पहले पहले कौन सा महानगर डूबेगा? बम्बई डूबेगी, ज्ञान जल में भी डूबेगी बाद में, वो पहले, और बाद में स्थूल जल में भी डूबेगी।
बाबा, आत्माओं में विष, जिन आत्माओं में विष होता है वो अपने आप को अशांत महसूस करती है।
हाँ जी,
और उस विष को शंकर पीता है?
शंकर नहीं पीता है, शंकर के अंदर शिव पीता है।
तो इसीलिए नाम पड़ा शांत करोति, शंकर का अर्थ बाबा ने बताया शांत करो थी, माना उस आत्मा को वो शांत करता है।
है, शांति देवा कहा जाता है, है। वास्तव में शांति देवा शंकर नहीं है, वो भी मैं हूँ।
वो जो आत्मा है जिनमें विष है, वो आत्मा को उस समय वो मुर्दे के रूप में देखती है ना, माना देह के उसे चैतन्य रूप में नहीं देखती, उसे मुर्दे के रूप में देखती है, क्या यही आधार बनता है? तो शंकर को चांडालों का आदर्श बताया, गुरु बताया
है, वो तो वो सबका ही बीज है ना, दास दासियों का भी बीज है, चांडालों का भी बीज है, प्रजावर्ग का भी बीज है, राम राजा राम प्रजा, वो आत्मा के लिए सब कुछ लागू होता है। दुनिया की ऐसी कोई बात नहीं जो तेरे पर लागू न होती हो।
बाबा, बाबा कहते हैं कि बेसिक में कईयों की अवस्था अच्छी थी और कईयों की एडवांस में आने के बाद अभी तामसी अवस्था है, लेकिन हमारे साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ बाबा।
अच्छा, एकदम टॉप मोस्ट है सतयुग आदि से लेकर के कलयुग अंतिम जन्म तक, एकदम सतो प्रधान देवता बन के रहेगा मुंह में घी सककर। और
वाणी आया है, गंगा जल की लोटी पर ले जाते हैं, रोज एक बूंद लोटी से निकाल पानी में डाल नहाते हैं, तो उसका मतलब क्या हुआ?
ब्रह्मा कुमारी आश्रम में लोटियां सरेंडर हुई या नहीं हुई, जैसे लोटी शिप पर चढ़ाई जाती है? सरेंडर हुई। फिर जो सरेंडर होती है, फिर उस लोटी को, बुद्ध रूपी लोटी को ले गए, दीदी दादियां उनको परमिशन दे देती है, ले जाओ। फिर उसमें से बूंद बूंद निकाल करके डालते रहते हैं, रोज स्नान करते हैं। ये कहां की बात है? यहीं की बात है। वेद की दुनिया जब योग युक्त हो जाएगी तो सारी दुनिया को प्रभावित करेगी, भले उसका रूप छोटा हो। ये ब्राह्मणों का किला ऐसा बन जाएगा संगठन जिसमें कोई भी विरोधाभासी न मन से, न वाचा से, न कर्म इंद्रियों से विरोध करने वाला उस संगठन में नहीं रहेगा या प्रवेश भी नहीं कर सकेगा। तो वाइब्रेशन जो संगठित होगा वो जरूर चारों ओर दुनिया में हड़कंप फैलाएगा। जो संकल्प करेगा सो सशक्त हो जाएगा। इसके लिए कहते हैं ब्रह्मा ने संकल्पों से सृष्टि रची। तो अकेले ब्रह्मा की बात है क्या? अभी तो 70 साल हो गए, कर्म इंद्रियों से कितनी भाग दौड़ के सेवा की, वाचा से कितनी सेवा की और धन से कितनी सेवा की। दुनिया वालों के ऊपर कोई असर हुआ क्या? हुआ? अच्छा, दुनिया वालों की बात छोड़ दो, हमारे ऊपर कोई असर हुआ? जैसे पहले अनिश्चय बुद्धि होते थे, कभी निश्चय बुद्धि कभी अनिश्चय बुद्धि, वैसे अभी भी निश्चय बुद्धि अनिश्चय बुद्धि का चक्र चलता रहता है। अनुदा हुआ है, एक सेकंड में ब्रह्मा सो विष्णु बनेगा, तो ब्रह्मा सो विष्णु बनेगा तो बच्चे भी नंबरवार ब्रह्मा सो विष्णु की स्टेज धारण करेंगे। हाँ
बाबा, सबसे ज्यादा बाप का संग जो है ब्रह्मा ब्रह्मा को लगा है।
ब्रह्मा को अगर बाप का संग सबसे जास्ती लगा हो तो संग का रंग संगम युग में देखने में आना चाहिए या नहीं?
एक बाप के साथ में 1936 से लेकर के और 69 तक जब तक उनका शरीर देहावसान नहीं हुआ तब तक बाप उनके शरीर में था।
बाप था, बाप ज्योतिबिंदु रूप में था या साकार में था?
ज्योतिबिंदु रूप में था।
तो ज्यादा संग किसका लगता है?
तो संग का रंग लगा ना बाबा को।
नहीं, संग का रंग जब कहा जाता है तो साकार के लिए कहा जाता है या बिंदी के लिए कहा जाता है?
उसको संग का रंग नहीं कहेंगे दोनों का?
बिंदी का संग का रंग कैसे लगेगा
बाबा? वही बिंदी जब प्रजापिता के अंदर प्रवेश करती है तो